दिन भर 29 नवंबर दिन गुरुवार, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। खेती की खस्ता हालत पर सांसदों का ध्यान खींचने के लिए हजारों किसानों ने दिल्ली में डेरा डाला।
इतना घाटे का सौदा है कि 5 साल बाद खेती सही बात है, ये पक्की सही बात है, खेती करना ही बंद कर देंगे।
राजस्थान में प्रभावशाली जाटों का वोट बीजेपी को मिलेगा, इसकी उम्मीद बीजेपी उम्मीदवार को भी नहीं।
मेरे जिले का मुझे ज्ञान है पूरा, तो वहाँ पे मैं जो देख रही हूँ वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है ज्यादा। समीकरण बदल भी जाते हैं, देखिए क्या होता है।
तेलंगाना में टीआरएस के लिए बदले राजनीतिक समीकरण की भी होगी चर्चा, और चर्चा ऑस्ट्रेलिया में अदानी ग्रुप के प्रोजेक्ट की भी, जिसका रास्ता हो गया है साफ, और होंगी आपकी चिट्ठियां भी। पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। अपनी मांगों को लेकर विभिन्न राज्यों के किसान एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। किसान इस बार दो मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। इसमें कर्ज से पूरी तरह मुक्ति और फसलों की लागत का 1.5 गुना मुआवजा शामिल है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए ये किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में एकजुट हुए हैं। जर्मनी की पुलिस देश के सबसे बड़े बैंक डॉयचे बैंक के दफ्तरों में तलाशी कर रही है। इस बैंक पर पैसों के लेन देन में गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। लगभग 6 स्थानों पर ये तलाशी अभियान चलाया गया है, जिसमें करीब 170 अधिकारी शामिल रहे। अभियोजन पक्ष के अनुसार बैंक के कर्मचारियों ने अपने क्लाइंट की मदद कर उन्हें गलत तरीकों से टैक्स बचाने में मदद पहुंचाई है। डॉयचे बैंक के एक प्रवक्ता जॉर्ज एडिगडोर्फ ने कहा कि बैंक प्रशासन का सहयोग कर रहा है। उन्होंने कहा,
Wir waren der Ansicht, dass wir alle relevanten Informationen den Behörden zum Sachverhalt Panama Papers bereitgestellt
haben. हमने तमाम जानकारियां पहले से ही प्रशासन को मुहैया करा दी हैं। हम फ्रैंकफर्ट के अभियोजन पक्ष से भी इस जांच के सिलसिले के संपर्क में हैं और उन्हें पूरा सहयोग दे रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर लगे सभी आरोप जल्दी साफ हो जाएं। ये थे डॉयचे बैंक के प्रवक्ता के शब्द। विश्व मौसम संगठन यानी WMO ने कहा है कि साल 2018 अभी तक के सबसे गर्म सालों के तौर पर रिकॉर्ड हो रहा है। अपनी ताज़ा रिपोर्ट में WMO ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के लिए जो मानक तय किए गए थे, दुनिया में कोई भी देश उसे पूरा नहीं कर पा रहा। इस सदी के अंत तक तापमान में 3 से 5 डिग्री तक वृद्धि हो सकती है। WMO ने जलवायु परिवर्तन मामलों के निदेशक मैक्स डिले ने इस बारे में BBC से बताया,
Temperature by itself is not really an adequate description of the kinds of changes that occur across
पूरी धरती में लगातार बढ़ता तापमान अपने आप में ही चिंता का विषय है। हम इस बढ़ते तापमान के चलते समुद्र की स्थिति में होने वाले बदलाव को भी जांच रहे हैं। वायुमंडल में मौजूद गर्मी का 90% से अधिक हिस्सा समुद्र से ही वाष्पित होता है। ये थे WMU में जलवायु परिवर्तन मामलों के निदेशक के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। यूक्रेन में पैदा हुए ताजा संकट के लिए जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने रूस को जिम्मेदार ठहराया है। बर्लिन में यूक्रेन के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बाद मर्केल ने कहा कि वे आगामी G20 सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने ये मामला भी उठाएंगी। हाल ही में क्रीमिया में यूक्रेन की नौसेना के जहाज को जब्त कर लिया गया था। इसमें यूक्रेन के कुछ नौसैनिक भी मौजूद थे। मर्केल ने उन्हें जल्दी से रिहा करने की बात कही है। इटली में शरणार्थियों के अधिकारों के लिए काम करने वाले समूहों ने शरणार्थियों को अपने लिए सुरक्षित जगह प्राप्त करने के अधिकार से वंचित करने वाले इटली के नए नियम की आलोचना की है। इटली की रिफ्यूजी काउंसिल ने इसे पीछे हटने वाला कदम बताया है। इटली के गृह मंत्री मैटियो सेल्विनी ने बीते बुधवार को संसद में एक नियम पारित करवाया था। इसके अनुसार प्रवासी या शरणार्थी या उनसे जुड़े कोई समूह इसके लिए शरण की मांग नहीं कर सकते। ब्राजील की पुलिस ने रियो डी जेनेरियो के गवर्नर लुइस फर्नेंडो पेजाओ को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसे कार वॉश नाम दिया गया है। पुलिस ने अपनी जांच के सिलसिले में 8 और लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस रियो के सरकारी दफ्तरों में भी तलाशी कर रही है। एक ब्रोकर ने आरोप लगाए हैं कि जब पेजाओ डिप्टी गवर्नर थे, तब से वे हर महीने $40,000 की रिश्वत लिया करते थे। BBC समाचार।
उनतीस नवंबर गुरुवार के दिन भर में सुनने वालों को अपूर्व कृष्ण का नमस्कार। भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हजारों किसान दिल्ली में जमा हो रहे हैं। کل رات سے یہ کسان دلی کے 5 الگ راستوں سے ہوتے ہوئے رام لیلا میدان میں جٹنا شروع ہوئے۔ کل وہ رام لیلا میدان سے سنسد کی اور ریلی نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کھیتی کی جو دشا ہے اس پر سنسد کا وشیش ستر بلایا جائے جہاں اس پر چرچا ہو۔ ہمارے سہیوگی فیصل محمد علی لگاتار دلی میں کسانوں کے پردرشن پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آج ایسے ہی کچھ کسانوں سے رام لیلا میدان میں بات کی۔
اس وقت کھڑے ہیں دلی کے رام لیلا میدان میں جہاں کی 2 دنوں کے کسان مکتی مارچ کے لیے سینکڑوں کسان جمع ہو رہے ہیں اور شاید اب ان کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ جو کسان آ رہے ہیں ان کی مکھیہ مانگیں ہیں کہ سنسد کا ایک وشیش ستر بلایا جائے اور 2 پرائیویٹ ممبرز بل جو ہیں، ایک کسانوں کے قرض کو لے کر اور دوسری ان کو جو لاگت ہے اس کو لے کر جو پیش کیے گئے ہیں ان کو پارت کروایا جائے۔ میرے ساتھ اس وقت رام لیلا میدان میں کچھ یوا ہیں جو کہ کسان ہیں، وہ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں؟
جی، میرا نام اجیت سنگھ ہے، میں بریلی سے ہوں، میں نے بی ٹیک کیا ہوا ہے اور میں کسان ہوں، اور میں مجھے درباگیہ ہے کہ مجھے اپنے حق مانگنے کے لیے یا یوں کہہ لیں کہ چھیننے کے لیے آج اس عمر میں بھی یہاں دلی آ کے اور سرکار کو مطلب جگانے کی کوشش کرنی پڑ رہی ہے۔ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ اس میں بچت نہیں ہے، اس میں فائدہ نہیں ہے۔
آپ کا نام؟
پشپیندر سنگھ۔
آپ کہاں سے آئے ہیں؟
ڈسٹرکٹ بریلی پڑتا ہے، وہاں سے تحصیل بہڑی ہے، اس میں چھوٹا سا گاؤں ہے رمپورہ۔
بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ چاروں لوگ جو ہمارے ساتھ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں یہ سب یوا ہیں۔ دلچسپی تھی کھیتی میں یا کس وجہ سے آئے؟
سر، بات یہ ہے کہ ہم 2 بھائی ہیں، ہم نے ایم کام کیا، اس کے بعد ہمیں 2 سال تک جاب نہیں ملی۔ چھوٹا بھائی ہے، وہ پڑھ لکھ رہا ہے، ہم سوچ رہے ہیں چلو ہمیں روزگار نہیں ملا، کیا پتا اچھی شکشا پراپت کر کے اس کو روزگار مل جائے۔ اسی کارن اگر گھر کی ہم ہیلپ نہیں کریں گے کھیتی میں تو اس کی پڑھائی کا خرچہ کہاں سے دے پائیں گے۔ اسی کارن اس میں خرچہ تو نکل نہیں پا رہا ہے۔ گھر والے تو یہی کہہ رہے ہیں لگاتار، کھیتی کرو ہی مت، تم چلے جاؤ کہیں جاب کرو، کچھ کرو، مگر جاب مل نہیں پا رہی ہے، مگر کوشش ہے کہ جاب مل جائے۔ اگر ایسا گھر والوں کا رجحان لگاتار رہا اور سب جو لوگ یوا کسان گھر سے جڑے ہوئے ہیں، اگر جاب ان کو ملتی گئی یا کسان سے ان کی روچی ہٹتی گئی، تو آنے والے 5 سال جو 10 سال جو بھی ہیں اس میں بھارت کے بھوشیہ کا کیا ہوگا جب سب لوگ کھیتی کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ تو
آپ کا نام جان سکتے ہیں؟
جی، میں بیرپال سنگھ، میں بھی بہڑی سے ہوں۔
بیرپال سنگھ جی، یہ بتائیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر والے جو ہیں انکریج نہیں کر رہے ہیں کھیتی سے یا ان کو جڑنا پڑا، کیا وجہ ہے کہ انکریج نہیں کیا جا رہا ہے؟
سب سے بڑی سمسیا تو یہ ہے کہ ہمارا کسان کے لیے کچھ بولا جاتا ہے سرکاری طرف سے اور وہاں زمینی استر پہ کچھ پہنچتا ہے۔ آج ہم کسان کی سب سے بڑی سمسیا یہی ہے کہ قرض معافی کا، اگر اتنا بڑا ادیوگ پتیوں کا اور ان کا سب کا ہوا ہے، اگر ایک ادیوگ پتی کا اگر اس میں کم ہو جاتا تو ایک ضلع حصے میں بڑھ جاتا۔
ہر کسان کا، کسی کا 1 لاکھ روپے، کسی کا 2 لاکھ روپے، نارملی کسان کا انکم ہی اتنی ہوتی ہے لگ بھگ، وہی 2 لاکھ 3 لاکھ اس میں سے اس کا نکال دیا جائے، خرچہ نکال دیا جائے تو وہی 50,000 60,000 مل پاتا ہے۔
کسان کی جب پیمنٹ رک جاتی ہے تو کیا مطلب کیا اس سے دقت آتی ہے؟ مطلب
دقت کیا، اسکول والے بچوں کو نکال دیتے ہیں، ہم لوگ وہاں دھرنا دیتے ہیں، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔
جب مان لیجئے کہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلا پیسہ نہیں مل پایا، پھر آپ کو اگلی فصل لگانی ہوتی ہے، تو وہ پھر کیسے مینیج ہو پاتی؟
وہی تو ہے، کسان اس کے لیے پھر سے قرضہ لیتا ہے کیونکہ اور اسے گھر بھی چلانا ہے، پھر اس کے گھر پہ قرضے دار آتے ہیں اور یہ سمسیاں کہیں نہ کہیں پھر سوسائڈ انکریز کرنے میں یہی مین رول پرووائڈ کرتے ہیں۔ ایک تو پیسہ لیٹ مل رہا ہے، پھر اس کا بیاج نہیں مل رہا ہے، اور کسان اپنے قرض کا بیاج بھی دے گا۔
یہ بتائیے کہ آپ جتنی لاگت لگا پاتے ہیں سنگھ صاحب، وہ آپ وصول کیوں نہیں کر پاتے؟
جی دیکھیے، جیسے کہ ہر چیز کوئی کمپنی یا کچھ انڈسٹری اپنے کوئی پروڈکٹ بناتی ہے، اس کی قیمت وہ اپنے اس کی کاسٹ پہ بتاتی ہے کہ اتنا رہے گا ہمارا منیمم ریٹیل پرائز جو بھی ہوتا ہے، لیکن کسانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے، وہ اپنی لاگت لگاتا ہے اور وہ خود قیمت بھی طے نہیں کر پاتا ہے۔ سب سے وڈمبنا تو یہی عجیب چیز ہے، پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔
کچھ لوگ ان کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا 1.5 گنا دے دیا، مگر 1.5 گنا طے کیسے کرتے ہیں؟ یہ انہیں اپنے طریقے سے کہہ دیا کہ ہم ان کا لابھ دیتے ہیں۔ لابھ کیا ہوتا ہے؟ اسے مانی 1 بیگھا ایک کسان کی قیمت قریب 2.5 لاکھ روپے کی ہے، وہ اس کا بھی تو جوڑیں وہ،
پھر گنا اگاتے ہیں،
گنا اگاتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ ہماری سوئم کی مزدوری، ہم بھی تو لگتے ہیں، ہم گھر میں اگر 4 سدسیہ ہیں سارے اس میں بجی ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی مزدوری یہ لاگت میں نہیں جوڑتے ہیں۔ دوسری چیز، ہم اس میں جو پیسہ کہیں سے بیاج پہ لے کے لگاتے ہیں وہ لاگت میں نہیں جوڑی جاتی ہے۔ تیسری چیز، جو ہم سنسادھن اپنے کھیت میں جٹانے کے لیے جو خریدتے ہیں وہ 1 بار چلائیں گے، 1 سال 2 سال چلائیں گے، تو اس کا بھی لاگت ہی نہیں جوڑتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر سب کچھ جوڑا جائے تو کھیتی اتنا گھاٹے کا سودا ہے کہ 5 سال بعد کھیتی صحیح بات ہے، یہ پکی صحیح بات ہے، کھیتی کرنا ہی بند کر دیں گے۔
دلی میں جٹے کچھ کسانوں سے بات کر رہے تھے فیصل محمد علی۔ اور اب ودھان سبھا چناؤ کی چرچا۔ راجستھان میں 7 دسمبر کو 200 سیٹوں کے لیے مت ڈالے جائیں گے۔ چناؤ پرچار تیزی پکڑ چکا ہے۔ वहां की राजनीति में जाट तबका काफी प्रभावशाली माना जाता है और ऐसे में सभी दल उन्हें अपनी अपनी ओर खींचने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
गाजो गाजो जे थी असाड़ कमर तेजा रे लग तो ही गाजो।
रेगिस्तान में अपने लोक देवता तेजाजी के गीत गाते जाट समुदाय ने इस मकाम पर पहुंचने से पहले लंबी यात्रा की है। उन हाथों में बंजर धरती को हरा भरा करने का हुनर है। पहले वे खेत खलिहान तक ही महदूद थे, अब वो जिंदगी के हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी की कहानियां लिख रहे हैं। राज्य की राजनीति में जाट समुदाय का बड़ा प्रभाव है। हर चुनाव में उनके 30 से ज्यादा विधायक चुनकर आते हैं, इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने संख्या में उनकी उम्मीदवारी को खासा महत्व दिया है। राजस्थान जाट महासभा के मुताबिक पिछले चुनाव में जाट समाज ने बीजेपी का साथ दिया था, लेकिन अब जाट महासभा कहती है बीजेपी ने उन्हें बहुत निराश किया है। जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील ने बीबीसी से कहा, खेती किसानी में लगे लोग मौजूदा सरकार से खुश नहीं है।
पिछली बार मोदी की वजह से बहुत ज्यादा लोगों में ये उम्मीदें थी कि मोदी पता नहीं क्या करेगा, बहुत कुछ देगा, 15 लाख देगा। लोगों का विश्वास था, तो विश्वास टूट गया। किसान परेशान है, मतलब मजदूर परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, हालत देश की बहुत खराब है।
सत्तारूढ़ बीजेपी के मुताबिक इन संगठनों के दावे में कोई सच्चाई नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा कहते हैं उनकी पार्टी समाज को जाति धर्म की निगाह से नहीं देखती। वे कहते हैं,
भारतीय जनता पार्टी के साथ जाट समुदाय पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। जाट समुदाय मूल रूप से किसान वर्ग है। किसानों के लिए जो पिछले 5 साल में राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने, चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का काम हो या राजस्थान में लगान माफी का काम हो, चाहे राजस्थान में कर्ज माफी का काम हो, मुझे लगता है उस बात के बाद में किसान कम्युनिटी जितनी भी है अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में और भारतीय जनता पार्टी के कामों को बड़ा अप्रिशिएट करती है। मैं याद दिलाना चाहूंगा 2008 में जाट समाज को ओबीसी में शामिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था।
इस समाज से संबद्ध निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। जाट समाज में युवा वर्ग का एक हिस्सा बेनीवाल को अपना नेता मानता है। समाज में कुछ लोग कहते हैं वोटों का कुछ हिस्सा इस पार्टी को भी जा सकता है। विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष रही सुमित्रा सिंह इसी समाज से है। वो 9 बार विधायक रही है और अभी बीजेपी के साथ है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कहती है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने किसानों के हक में कुछ सौगातें दी है, लिहाजा कुछ वोट बंटेंगे। मगर वे अपने झुंझुनू जिले के बारे में कहती है,
मेरे जिले में तो कम से कम मुझे इस बात का पूरा पता है कि वहाँ तो झुकाव कांग्रेस की तरफ ज्यादा है जाटों का। मुझे तो कांग्रेस की ओर जाता ज्यादा कांग्रेस की ओर जाता दिख रहा है। मेरे जिले का मुझे ज्ञान है पूरा, तो वहाँ पे मैं जो देख रही हूँ वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है ज्यादा। समीकरण बदल भी जाते हैं, देखिए क्या होता है। बीजेपी में भी है, कांग्रेस में, दोनों ही पार्टियों ने किसान वर्ग को अपनी ओर से एक एक सौगात दी है।
कांग्रेस के पवन खेड़ा कहते हैं कि समाज के सभी वर्ग कांग्रेस की ओर उम्मीद से देख रहे हैं।
समाज का हर तबका, हर वर्ग कांग्रेस की ओर उम्मीद की नजरों से देख रहा है। उसने कांग्रेस का पुराना राज भी देखा है, उसको वो दिन याद आ रहे हैं। वो हर तबका ये चाहता है कि फिर से कांग्रेस को कमान संभाल दी जाए, ताकि सरकार जिसको चलानी आती है वही सरकार चलाए।
चुनाव है तो सियासी पार्टियों के पास कुछ दावे हैं, कुछ वादे हैं, लेकिन मतदाता तो अपनी मर्जी का मालिक है। कोई नहीं जानता वो किस बटन पर उंगली दबाएगा। नारायण बारेठ, बीबीसी जयपुर।
राजस्थान के साथ साथ 7 दिसंबर को तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति ने विधानसभा भंग कर 6 महीने पहले ही चुनाव करवाने का फैसला किया था। वहां भी चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। क्या कुछ कह रही हैं पार्टियां, ये जानने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले हैदराबाद में बात की वरिष्ठ पत्रकार उमर फारूक से।
मतदान की तारीख जितनी तेजी के साथ करीब आती जा रही है, उतनी ही नेताओं का एक दूसरे पर आलोचनाओं की रफ्तार है और तीखापन है वो बढ़ता जा रहा है। खासतौर से तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव अपनी तीखी जबान के लिए बहुत ही जाने जाते हैं, तो उन्होंने राहुल गांधी को ज्यादा निशाना बनाया है अपने चुनावी अभियान में, खासतौर से कल और आज जो उनकी चुनावी सभाएं हुई हैं। तेलुगुदेशम पार्टी का साथ लेने पे और उसका हाथ थामने पे उन्होंने कांग्रेस को कड़ी आलोचना का निशाना बनाया और कहा कि जिस पार्टी ने तेलंगाना का भी विरोध किया था उसका साथ कांग्रेस पार्टी दे रही, तो इसका मतलब यह है कि दोनों ही पार्टी तेलंगाना के खिलाफ है। और भारतीय जनता पार्टी हो या नरेंद्र मोदी हो, उनके निशाने पे इसलिए है, उनका कहना है कि जितने वादे तेलंगाना के साथ किए गए थे वो पूरा नहीं किए गए, और विशेषकर उनका गुस्सा गुस्सा इस बात पे भी था कि उन्होंने 12% आरक्षण देने का जो सुझाव रखा था मुसलमानों को और जनजातियों को, उसको पूरा नहीं किया गया, कि उनका नाम मोदी और अमित शाह ही इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे। दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेलुगुदेशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने भी आज हैदराबाद में अपना दूसरे दिन अभियान चलाया है। और खास बात यह रही कि दोनों नेता पहली मर्तबा मिले हैं, कल ही उनकी मुलाकात हुई पहली बार आमने सामने, और दोनों ने इस बात की घोषणा की है कि उनके बीच में कोई संबंध नहीं है, वो अच्छे दोस्त हैं, वो अपने अतीत को भूल के आगे देखना चाहते हैं, और दोनों ने ही मिलकर कड़ा हमला किया है तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार पे और खासतौर से के चंद्रशेखर राव पे। उन्होंने कहा केसीआर और टीआरएस जो है वो बीजेपी की बी टीम है।
केसीआर ने चौंकाते हुए सितंबर में कहा कि चुनाव करवाएंगे, तो उनके दिमाग में सीधी सीधी रणनीति थी कि विपक्ष जो है वो बहुत ही कमजोर हालत में है और पता नहीं 2019 में होगा उस समय क्या नौबत आएगी, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसके रिजल्ट का भी पता नहीं क्या असर होगा, ये सोचते हुए उन्होंने पहले चुनाव करवा दिया था। मतलब एक तरफ केसीआर थे, दूसरी तरफ लगता था कि कोई नहीं है। क्या वही स्थिति है अभी, या अभी चुनाव नजदीक आते आते वो स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है, केसीआर को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है?
जी, कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति में नाटकीय ढंग से परिवर्तन आया है। 6 सितंबर को जब उन्होंने भंग किया था विधानसभा को, तब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आसानी के साथ वो जीत जाएंगे, लेकिन आज वो कहानी नहीं, क्योंकि उस समय विपक्ष बिखरा हुआ था, आज विपक्ष संगठित है, हर जगह लगभग 3 रुखी मुकाबला हो रहा है। एक तो जो ग्रैंड अलायंस या महागठबंधन है कांग्रेस पार्टी, तेलुगुदेशम, सीपीआई और तेलंगाना जन समिति का, ये 4 दल एक साथ हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी है और इनके मुकाबले में तेलंगाना राष्ट्र समिति खड़ी है। इसका अंदाजा शायद खुद केसीआर को भी हो रहा है कि मुकाबला उतना आसान नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने ज्यादा तेजी पैदा कर दी है। लगभग रोज वो 3-4 चुनावी सभाएं हर जगह कर रहे हैं, लेकिन अब तक जितने सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं उनमें सब में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत काफी पीछे चल रही है। हालांकि वो बार बार ये कहते रहे इससे पहले कि अब अगली बार जो सरकार बनेगी तेलंगाना में वो बीजेपी की होगी, ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब असल मुकाबला कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो और टीआरएस के बीच में दिखाई दे रहा है।
हैदराबाद से ये थे वरिष्ठ पत्रकार उमर फारूक।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
भारत की नामी एनर्जी कंपनी अदानी ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में उसकी एक कोयला खदान परियोजना का रास्ता साफ हो गया है। इस परियोजना को लेकर विवाद था और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के बैंकों ने प्रोजेक्ट के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था। अब कंपनी का कहना है कि वो इसके लिए फंड का इंतजाम खुद ही कर लेगी। हमारे सहयोगी विनीत खरे कुछ महीने पहले इस परियोजना के बारे में रिपोर्टिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे। मैंने थोड़ी देर पहले विनीत से पूछा कि अदानी ग्रुप के लिए प्रोजेक्ट की बात का आगे बढ़ना कितना अहम है।
अपुन, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि अडानी ग्रुप को लेकर ऑस्ट्रेलिया में कई महीनों से लगातार प्रदर्शन होते रहे हैं, और पिछले कुछ महीने तक जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो उनका जो प्रोजेक्ट है कारमाइकल माइन से लेकर पोर्ट तक एक रेलवे ट्रैक बनाने का प्रोजेक्ट है। मतलब आप पहले खदान से कोयला निकालेंगे तो उसको कैसे उसको एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे दूसरे बाजारों में ले जा पाएंगे, भारत तक ले जा पाएंगे, इसलिए ये जो रेलवे ट्रैक है ये बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन उस रेलवे ट्रैक की फंडिंग कैसे की जाए उसको लेकर सवाल थे, क्योंकि कई जो बैंक्स थे उन्होंने, क्योंकि प्रदर्शन लगातार हो रहे थे, उसकी फंडिंग से मना कर दिया था। क्यों इसे लेकर प्रदर्शन हुए, क्योंकि वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनका कहना है कि जो कारमाइकल माइन है वहां इतना ज्यादा कोयला है कि उसका अगर यूटिलाइजेशन शुरू हुआ, उसको जलाया जाना शुरू हुआ, तो जो गैसेस हैं वो निकलेंगी और उससे जो क्लाइमेट चेंज है वो और तेज होगा। दूसरा कारण था कि वहाँ जो अंडरग्राउंड वाटर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका यूटिलाइजेशन होगा तो जो आसपास का इलाका है, जो लोग रह रहे हैं वहां पर, उन्हें पानी नहीं मिल पाएगा। तो दो बेसिक कारण थे जिसको लेकर प्रदर्शन था। लेकिन जो एक दूसरा जो पक्ष था वो उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया में नौकरियों की बहुत ज्यादा जरूरत है, खासकर माइनिंग महत्वपूर्ण सेक्टर है ऑस्ट्रेलिया में, हजारों लोग इस सेक्टर से सालों से उसमें काम करते रहे हैं। तो जो पक्षधर थे उनका कहना था कि उन्हें नौकरियां मिलेंगी, तो ये एक तरह से डिविजन था वहां पर।
अच्छा, विरोध कौन कर रहा है ये बात तो समझ में आ गई, और बैंक जो है वो फंड नहीं दे रहा है ये बात भी समझ में आ गई, लेकिन जो समर्थन कर रहे हैं लोग ऑस्ट्रेलिया में, जिनसे आपने भी बात की थी, ये कौन लोग हैं? ये सरकार के लोग हैं या फिर सरकार से बाहर के जो व्यवसायी हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग हैं?
सरकार के भी लोग हैं, सरकार के कई लोग हैं, उनका कहना था कि ये कंपनियों को यहाँ पर आना चाहिए, उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आम लोग भी हैं जो माइनिंग सेक्टर से जुड़े रहे हैं, वो भी वहां पर भी इसको लेकर एक तबका था जो इस कंपनी का समर्थन करता था और उन्हें और उनको लगता था कि अडानी जैसी कंपनियों को और आना चाहिए, क्योंकि इससे जो एक कई जो इलाके हैं जैसे क्वींसलैंड का इलाका है वहां कई जगह जॉब की क्राइसिस, साउथ ऑस्ट्रेलिया में जो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है वहां जॉब क्राइसिस उन लोगों ने मुझे बताया वहां ज्यादा है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में उतनी क्राइसिस नहीं है। तो ये जो अडानी का जो इन्वेस्टमेंट है क्वींसलैंड में, वहां आम लोगों ने मुझे बताया कि वो इस निवेश का स्वागत करते हैं और वो चाहेंगे कि अडानी जैसी कंपनी और आए और निवेश करें।
अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे विनीत खरे। और अब समय है आपकी चिट्ठियों का,
आपकी राय। नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूं राजेश प्रियदर्शी और स्टूडियो में मेरे साथ हैं
मैं हूं ज्योतिका आपके साथ।
आइए ज्योतिका, शुरू करते हैं चिट्ठियों का सिलसिला।
सबसे पहले मैं लेना चाहूंगी, गणेश प्रसाद लिखते हैं कि प्रिय मित्र सूर्यांशी जी नमस्कार, मेरा ईमेल प्रसारित नहीं किया जाता, प्रकाश करण और करतारपुर साहिब कॉरिडोर के बारे में अपनी राय भेजी थी जिसे आपने शामिल नहीं किया, आखिर आप मुझसे नाराज क्यों हैं समझ नहीं आता, परंतु मेरा ईमेल को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है, आशा है इस बार मेरा ईमेल जरूर लिया जाएगा।
देखिए ज्योतिका ने आपकी शिकायत दूर कर दी। ज्योतिका हूँ, सूर्यांशी हूँ, इंदु पांडे हो या कोई और या मैं, इस तरह से हम चिट्ठियां नहीं चुनते कि हम किसी से नाराज हैं या किसी से खुश हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी बात है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे श्रोता बहुत प्यार से हमें पत्र लिखते हैं और सब ये उम्मीद करते हैं कि उनकी चिट्ठियां कार्यक्रम में शामिल हों, लेकिन हमारी मजबूरी भी समझिए कि इतनी सारी चिट्ठियों में से हम कुछ चिट्ठियों को ही कार्यक्रम में स्थान दे पाते हैं, लेकिन हम सभी चिट्ठियों को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं की चिट्ठियाँ शामिल की जा सकें। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपकी शिकायत दूर हो गई होगी। जी,
गुड्डू गौतम बिहार से लिखते हैं कि नमस्कार, अयोध्या से समीर आत्मज मिश्र जी की रिपोर्टिंग शानदार रही, टीवी पर देखे लाखों की भीड़ में पत्रकार लोग मुश्किलों का सामना कर रहे थे, समीर आत्मज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिनों बाद मोहनलाल जी की बीबीसी पर आवाज सुनी, बहुत अच्छा लगा।
आपका बहुत शुक्रिया, और हमारी कोशिश यही होती है कि जो शोर है, हंगामा है, भीड़ है और जो टीवी चैनलों पर जिस तरह की कवरेज है उससे अलग हटकर हम आपको वाकई जहां घटना हो रही है वहां से चीज़ें बता सकें और सुनवा सकें। आपको अच्छा लगा, आपका बहुत शुक्रिया, और हम आपकी तारीफ समीर जी तक पहुंचा देंगे।
रमेश माका बिहार से लिखते हैं, बीबीसी को मेरा नमस्कार, मेरी एक शिकायत है कि मैं बीबीसी ऐप का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, छुट्टियों के दिनों में जब मैं अपने गांव जाता हूँ तो नेटवर्क ठीक से नहीं होने के कारण ऐप का यूज़ नहीं कर पाता, बीबीसी का प्रसारण रेडियो सेट पर ठीक से नहीं आता जिसके कारण मैं बीबीसी का प्रोग्राम ठीक से नहीं सुन पाता हूँ, कृपया इसे ठीक किया जाए जिससे गाँव दूर दराज के इलाकों में इसका प्रसारण अच्छे से सुनाई दे।
दो चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है और जिसका हमें लगातार अफसोस होता है और हमारे बहुत सारे जो श्रोता हैं और पाठक हैं वो शिकायत करते हैं, पहली दिक्कत जो है वो शॉर्ट वेव रेडियो के रिसेप्शन की है, जिसमें हम तकनीकी तौर पर जो कुछ कर सकते हैं सब कुछ करते हैं, उसके बाद वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है, और आप जहां हैं वहां इंटरनेट की क्या हालत है ये भी हमारे काबू से बाहर की चीज़ है, हमें बहुत अफसोस है, लेकिन जब भी आप सुन सकें हमारे प्रसारण आप सुनिए, और अगर आप ऐप पर नहीं सुन पा रहे हैं तो आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि अगर आपका फेसबुक चल रहा हो तो आप फेसबुक पर हमारी स्टोरीज देख सकते हैं, या फिर और जो दूसरे तरीके हैं वो अपना सकते हैं जो कि कम स्पीड वाली इंटरनेट पर भी काम कर सकती हैं। पत्र लिखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और हमें अफसोस है कि आप हमें नहीं सुन पा रहे हैं और नहीं पढ़ पा रहे हैं।
रमेश माका आगे भी लिखते हैं कि 27 नवंबर को दिन भर में रेहान फजल की भारतीय हॉकी टीम के सफर पर की गई प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी, 28 नवंबर को दिन भर में वात्सल्य राय की दुनिया जहान लाजवाब थी, और आज 29 नवंबर को नमस्कार भारत में दिल्ली में किसानों की रैली पर फैजल मोहम्मद अली की रिपोर्ट भी बहुत अच्छी लगी।
अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये ईमेल आज आया है और इन्होंने आज ही लिखा है और आज ये सुन पा रहे थे, इसका मतलब ये है कि कभी इनका इंटरनेट कनेक्शन ठीक से काम करता है और कभी नहीं करता। हम तो यही चाहेंगे कि हमेशा ठीक से काम करे ताकि आप हमें इसी तरह सुनते रहें और अपने पत्र भी भेजते रहें। कोई चिट्ठी जो डाक से आई हो देखिए आई है, लक्ष्मण दास शर्मा ने लिखी है मंडलाना नारनौल हरियाणा से, और ये रेहान फजल की एलटीटी प्रमुख प्रभाकरण के बारे में जो विवेचना थी उसकी बहुत सराहना की है, और उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्ञानवर्धक था, उसमें ऐसी बातें बताई गई जो आज तक किसी और माध्यम से हमें नहीं मिली थी, जैसे कि प्रभाकरण को बुलेट प्रूफ जैकेट राजीव गांधी ने भिजवाई थी ये बात पता नहीं थी। बहुत कार्यक्रम अच्छा लगा। इन्होंने और भी कुछ दूसरे कार्यक्रमों की तारीफ की है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण दास शर्मा जी। और इसी के साथ हम अब अपने श्रोताओं से विदा लेते हैं। अगर आप हमें पत्र लिखना चाहें तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल से पत्र लिखना चाहें तो पता वही है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
और अब समय हो चला है खेल जगत की हलचलों पर निगाह डालने का, आज राखी शर्मा के साथ।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। हॉकी विश्व कप 2018 के पूल ए के पहले मैच में आज अर्जेंटीना और स्पेन के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में अर्जेंटीना ने 4-3 से जीत हासिल की। शुरुआती गोल स्पेन की तरफ से हुआ, हालांकि बराबरी करने में अर्जेंटीनियाई खिलाड़ियों ने देर नहीं की। हाफ टाइम तक अर्जेंटीना 3-2 से आगे रही। फिलहाल दूसरे मुकाबले में पूल ए से ही न्यूजीलैंड और फ्रांस की टीमें आमने सामने हैं। वहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एकादश के खिलाफ जारी 4-दिवसीय अभ्यास मैच में भारत ने आज दूसरे दिन पहली पारी में 358 रन बनाए। भारत की तरफ से 5 बल्लेबाज अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे। सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने सर्वाधिक 66 रन की पारी खेली। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा 54, कप्तान विराट कोहली 64, हनुमा विहारी 53 और अजिंक्य रहाणे 56 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुए। टॉप ऑर्डर में सिर्फ केएल राहुल रन बनाने से चूके, जो 3 रन पर आउट हो गए। केएल राहुल के बारे में भारतीय टीम के सहायक कोच संजय बांगड़ कहते हैं,
हमें जो रीडिंग लग रहा है जिस तरह से वो बॉल खेल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इट्स जस्ट वन हिट अवे। मतलब हम जानते हैं कि उनमें काबिलियत कितनी है, उस काबिलियत को अगर वो परिवर्तित करना चाहेंगे अपने परफॉर्मेंसेस में तो टीम के लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अभी वो ऐसा नहीं है कि यंग प्लेयर है, क्योंकि वो सेकेंड ओवर पे है और अभी तक तकरीबन 30 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है और हमारी अपेक्षा उनसे यही है कि वो जिम्मेदारी लेके खेलें और टीम के प्रति अपना जो रोल है उसको पूरा करें।
जवाब में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एकादश ने दिन का खेल खत्म होने तक बिना कोई विकेट गवाए 24 रन बना लिए थे। डॉर्सी शॉर्ट 10 और मैक्स ब्रायन 14 रन बनाकर नाबाद हैं। इसके अलावा T20 विश्व कप में बल्लेबाजी क्रम को लेकर संन्यास की धमकियों और टीम में अव्यवस्था फैलाने के कोच रोमेश पवार के आरोपों पर सीनियर क्रिकेटर मिताली राज ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि ये उनके जीवन का काला दिन है और वो इन आरोपों से बेहद दुखी और आहत हैं। खेल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और देश के लिए 20 साल खेलने के दौरान उनकी मेहनत और पसीना सब जाया गया। मिताली ने पहले पवार पर आरोप लगाया था कि वो उन्हें बर्बाद करना चाहते थे, जबकि कोच ने T20 विश्व कप पर अपनी रिपोर्ट में टूर्नामेंट के दौरान उनके रवैये पर सवाल उठाए। भारत को सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने हराया और उसी मैच में मिताली को बाहर किए जाने पर से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
खेल समाचार सुना रही थी राखी शर्मा। और अब सभा के अंत में एक बार फिर मुख्य समाचार सुनते हैं भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। अपनी मांगों को लेकर विभिन्न राज्यों के किसान एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। किसान इस बार दो मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें कर से पूरी तरह मुक्ति और फसलों की लागत का 1.5 गुना मुआवजा शामिल है। जर्मनी की पुलिस देश के सबसे बड़े बैंक डॉयचे बैंक के दफ्तरों में तलाशी कर रही है। इस बैंक पर पैसों के लेन देन में गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। विश्व मौसम संगठन यानी WMO ने कहा है कि साल 2018 अभी तक के सबसे गर्म सालों के तौर पर रिकॉर्ड हो रहा है। यूक्रेन में पैदा हुए ताज़ा संकट के लिए जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने रूस को जिम्मेदार ठहराया है। बर्लिन में यूक्रेन के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बाद मर्केल ने कहा कि वे आगामी G20 सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस मामले को उठाएंगी। इटली में शरणार्थियों के अधिकारों के लिए काम करने वाले समूह ने शरणार्थियों को अपने लिए सुरक्षित जगह प्राप्त करने के अधिकारों से वंचित करने वाले इटली के नए नियम की आलोचना की है। ब्राजील की पुलिस ने रियो डी जेनेरियो के गवर्नर लुइस फर्नेंडो पेजाओ को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसे कार वॉश नाम दिया गया है। पुलिस ने अपनी जांच के सिलसिले में 8 और लोगों को गिरफ्तार किया है। केन्या पुलिस के 2 अधिकारी बेहद ही नाटकीय अंदाज में पुलिस की हिरासत से भागने में कामयाब रहे। इन दोनों अधिकारियों पर रिश्वत मांगने के आरोप थे। बीबीसी समाचार।
तो दिन भर में आज इतना ही, मगर याद रखें कि आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com के सहारे हमसे लगातार जुड़े रह सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेज पर भी आप आ सकते हैं। आज इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। अब सभी साथियों की ओर से मैं अपूर्व कृष्ण विदा लेता हूँ। अगली मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।